बात कहते हैं भैया व्रत। भैया व्रत भी जो है कहीं कहीं पर तो जो है देशावकाशिकम वा सामयिकम प्रोसदोग वासो वा भैया व्रतम शिक्षा व्रतानि चत्वारी शिष्ठानि ऐसा भी लिया है, और कहीं कहीं पर जो है भोगोपभोग का परिमाण करना, भैया व्रत करना और भोगोपभोग का परिमाण करना। रत्नगण शाकाचार्य के अनुसार थोड़ा अलग है और तत्वार सूत्र के अनुसार एक दो व्रतों में वहां दिग्व्रत देशव्रत अनर्दंड दिया है, और यहां पर दिग्व्रत और अनर्दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण ये गुण व्रत है। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि कंफ्यूज ना हो आप, हुआ कुछ नहीं है कि गुण व्रत का एक उठ करके शिक्षा व्रत में चला गया और शिक्षा व्रत का आकर के गुण व्रत में आ गया, और कुछ नहीं है, वो पूरे के पूरे साथी हैं। और ज्यादा कहीं कहीं पढ़ने में आ जाएगा आपको कि देशाव, अभी पढ़ेंगे अपन जब रत्नगण शाकाचार्य में, तो उसमें तो देशावकाशिक जो व्रत है वो शिक्षा व्रत में, और अपन ने देश व्रत पढ़ लिया है गुण व्रत में, तो वहां से जो भोगोपभोग का था वो इसमें आ जाएगा शिक्षा व्रत में, भोग और उपभोग की सामग्री का डिमिनेशन कर लेना। पहले अपन तीसरे नंबर पर, हाँ पहले यही कर लें, समय रोजदोगवास भोगोपभोग परिमाण। भोग का मतलब क्या होता, जो चीज एक बार खाई जाए, मैंने एक बार उपयोग में आए फिर बार बार नहीं उपयोग में आए, तो भोजन इत्यादि क्या है, ये एक ही बार उपयोग में आने वाली चीज, इसलिए इसको भोग सामग्री कहते। उपभोग बार बार उपयोग में आने वाली, तो वस्त्र इत्यादि है, फिर दूसरे दिन पहन सकते हैं, एक दिन पहन लिए तो अब ऐसा नहीं है कि खराब हो गए, दूसरे दिन फिर पहन सकते, ये सब उपभोग। इन सामग्रियों का लिमिटेशन कर लेना, क्योंकि इनके माध्यम से भी पाप होता है, और मुझे रक्षा करनी अपने अहिंसा व्रत की, और मुझे शिक्षा लेनी है मुनियों के आचरण की, वे कितना अधिक लिमिटेड रखते हैं अपने भोजन की, कितनी सी चीजें हैं उनकी, तो हमने भी जो है भोग उपभोग की चीजों को लिमिट कर ली कि हम इतनी ही चीजें उपयोग में लेंगे, इससे अधिक नहीं लेंगे, ये हो गया आसानी से भोग उपभोग। और भैया व्रत नाम का, या कि भैया व्रत की जगह पर कहीं कहीं पर अतिथि संविभाग भी लिया है, मुनि को भोजन दे फिर करे निज आहारा, ये भी एक शिक्षा व्रत है, मुनि महाराज जी को हम आहार दे करके फिर अपना भोजन करेंगे, तो आहार से हमें शिक्षा मिलेगी कि देखो कितना चुपचाप मन में आ भी रहा है कि वो चीज रखी और दे है ही नहीं रहे, दे देते तो अच्छा रहता ऐसा आ जाता है मन में, और अपन होते श्रावक सामान्य होता, जाओ जल्दी परोसो, ये वाली चीज लाओ वो वाली चीज लाओ, ये तो भाई आप जो है हमने ये सीखा आहार दे करके कि ऐसा नहीं करना, जो आ गया है उसको शांति से चुपचाप डाल लेना, ये शिक्षा मिल रही है अतिथि संविभाग करने से। और सबसे बड़ी चीज कि अपने भोजन में से कुछ देना है, जो अपन ने जो कर रहे हैं संविभाग मतलब समीचीन भाग करना, अतिथि के लिए भी मेरे भोजन में
से भाग निकालना,
उसमें से ही हम देंगे, उसमें से दे रहे हैं, उनके लिए भी अलग से है, उनके उनके लिए भी अरेंज किया है अलग से, लेकिन अपने अपनी संपत्ति में ही से तो किया है, अपने लिए तो रोज रोज करते हैं, लेकिन आज जो है उनके लिए भी हम इसमें से विभाग कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का इतना पैसा उनके उनके आहार इत्यादि के लिए या औषधि के लिए जो भी चीज है उसमें लगाएंगे। अतिथि संविभाग, अपने धन पैसे का सामग्री का अतिथि के लिए भी एक निश्चित हिस्सा तय कर देना रोज रोज, अगर कोई नहीं भी है तो कहते हैं सबसे पहले इतना ही स्मरण करके भोजन करता है कि जहां भी तीन कम नौ करोड़ मुनि महाराज हैं उन सबका निरंतराय भोजन हो, भोजन की वेला 10 बजे की है, मैं 10 बज के 5 मिनट पे शुरू करूंगा, क्योंकि अब उनका शुरू हो गया होगा, मैंने शुरू कर दिया, ये अतिथि संविभाग है, जहां नहीं है वहां
भाव
बनने का भावनात्मक रूप से है, जहां प्रैक्टिकल नहीं है वहां पर भावनाएं हैं अपने पास में। और या फिर भैया वृत्ति, भैया वृत्ति में भी यही आ जाता है कि हम मुनियों की सेवा करेंगे, उनसे हमें उनके जैसे आचरण करने की शिक्षा मिलेगी, जितना हम निकट बैठेंगे जितना हम उनकी सेवा में उपस्थित हो। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपने मेरे पैर दबा दिए और आपने मेरी प्रशंसा कर दी, ये सेवा नहीं मानता मैं, सेवा वो कहलाती है जिसमें हमने उनके अनुकूल प्रवृत्ति करी, उनको क्या अच्छा लगता, उनके धर्म ध्यान में किस चीज से, मैं लोगों से कहता हूं कि आप पैर इसलिए दबाना ताकि मैं दो माला अधिक फेर सकूं, थकान निकल जाए, पैर इसलिए मत दबाना कि मैं आराम से सो सकूं। अगर आपने मुझे ऐसा भोजन दे दिया है जो कि निद्रा लाने वाला है तो आपने भैया वृत्ति ठीक नहीं की। हमारे महाराज जी हैं सो बढ़िया बढ़िया सब चीजें खा ले, मैं खा तो ली, मैंने भी इकट्ठी जाके हूं करेंगे भीतर एक बार में, तो एक हाँ श्रावक का विवेक रखता है, वो वैयावृत्ति करता है तो निर्बद्ध वैयावृत्ति करता और तप को बढ़ाने के लिए वैयावृत्ति करता, उसको इस बात की शिक्षा मिलती है। सबसे बड़ी वैयावृत्ति लिखा उसमें कि उनके अनुकूल चर्या करना, उनके ज्ञान ध्यान और तप में सहयोगी बनना। वैयावृत्ति वही है जो उनके ज्ञान ध्यान और तप में सहयोगी बने। सब अकेले मुनि का नहीं है, ये तो उत्तम पात्र है, ये लक्षुल्लकारी का मध्यम पात्र है और सामान्य श्रावक जघन्य पात्र है, उसका भी ध्यान रखना है। पर अपना सारा ध्यान चला जाता है कि मुनि महाराज जी की वैयावृत्ति नहीं, वैयावृत्ति उत्तम मध्यम जघन्य सब पात्रों की, हमारे आसपास जो धर्मात्मा लोग रहते हैं, हमारे घर में ही मान लो माने आज उपास करा है, क्या करें अपन, माँ पैर दबा दें क्या? अच्छा तो तुम्हारे लिए कैसा अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है वो कर दें। भैया हमें तो तत्वार्थ सुना दो। हाँ बिल्कुल अभी सुना देते हैं आपको तत्वार्थ। ये सब चीजें वहां भी घटित होंगी। कोई व्यक्ति व्रती है और वो धर्म ध्यान कर रहा, तो उसके धर्म ध्यान में सहयोग बनना, ये हो गई भैया व्रती। अब वो घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई महाव्रती भी हो सकता है। ये श्रावक इससे क्या करेगा, इस भैया व्रती से उनके जैसे आचरण की शिक्षा मिलेगी। व्रतियों के निकट रहने से व्रतियों के जैसे आचरण की, और अव्रति के निकट रहने से अव्रति का मन होगा। कोई अपन को मंदिर जाने के लिए बुलाने आएगा तो हमारा उपकार कर रहा हो, वो ये अगर कहे कि सिनेमा नहीं चल रहा है, फिल्म आई है तो उसके साथ हो जाइएगा तो वो देखाइएगा, और अगर आप व्रती के साथ रहिएगा तो उसके आचरण जैसा वो आएगा। तो ये संगति जो करने का, जिसको ये लोग अपनी भाषा में सत्संग कहते हैं, मैं तो सोचता हूँ वो ही है भैया व्रती, मतलब सत्संग। अच्छे लोगों के बीच बैठेंगे तो अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे विचार बनेंगे मन अच्छा रहेगा, आचरण भी अच्छा हो जाएगा। इस दृष्टि से ये सब शिक्षा व्रत में आगे सामाय प्रोजोपवास भोगोपभोग परिमाण अतिथि संविभाग कह लो या कि भैया व्रत कह लो, ये सब जो है शिक्षा व्रत है। बारह व्रतों को पांच अणु व्रत,
पांच अणु चार
नौ और तीन वन व्रत, दिग्व्रत देश व्रत और ठीक बारह हो गए अब तो।
अच्छा मैंने शायद मिस तो नहीं किया, महाव्रत भी बताया
नहीं, महाव्रत नहीं बताएंगे अगर आप कहो तो
नहीं ऐसा मैं पूछ रहा था कि शायद
थोड़ी देर हंसना भी चाहिए, सीरियसली कर रहे थे हो गया अपना पढ़ाई तो पूरी हो गई बारह व्रतों की, अब इस पे डिस्कशन कर लीजिए।
कभी कभी सहाय करने बैठते हैं।
अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जब हमें कोई चीज मालूम होती फिर डिस्कशन करने में ज्यादा मजा आता है, जब तक अपने को मालूम नहीं तो डिस्कशन में
नॉलेज नहीं
होता है। आप कह रहे
हैं जब भी सामायिक करने बैठते हैं और अच्छे विचार नहीं आते हैं
तब भी सामायिक में तो बैठे रहना चाहिए। तीन तरह की होती है, एक शरीर को बिठाना, एक वचन को बिठाना, एक मन को बिठाना। शुरुआत में तो शरीर को बिठाना ही सीखना पड़ेगा। 15 मिनट में अपने शरीर को बिठा ले हूं, ये तो यहां वहां सब जगह भागना चाहता, घूमना फिरना चाहता, नहीं बैठो यहीं पर बैठो। तो क्या करेंगे, वचन, वचन कोई मत घुमाना, वचन नहीं बोलना, दो काम तो सद गए। अब रहा मन, मन को साधना, बस ये भर आ गया अगर तो सामायिक शुरू हो गई। और ये नहीं समझना कि हमने शरीर को साध लिया और वचन को साध लिया तो कुछ नहीं किया, इतना भी बहुत कर लिया। और निरंतर प्रयास है मन को साधने का। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लोग किसी और दूसरे पर्पस से शरीर को साधे रहते हैं, वचन को साधे रहते हैं। हमारा पर्पस है मन को साधने का, इसलिए शरीर और वचन हमने साधा है तो वो भी सार्थक है, और फिर धीरे धीरे मन भी साधेगा। मन के साथ तो ये है, ये ध्यान रखना, आप जैसे हम लोगों के लिए कहा है कि एक क्षण सावधान तो दो क्षण असावधान रहेगा नियम से। आप कितने बड़े हो तीर्थंकर भी क्यों ना, एक क्षण अप्रमाद का, दो क्षण प्रमाद की, दुगना समय है प्रमाद का। अप्रमाद मतलब अवेयरनेस।
दो क्षण ऐसे होंगे जिसमें वो बिगड़ जाएगा,
उतना रेस्ट के लिए आना ही पड़ेगा। देखो आप ऊपर तक गए वहां तक, और फिर बीच में ले रहे, फिर उधर तक गए, ये जो बीच के क्षण है वो कितने हैं, उधर जाने पेंडुलम घूमता है इधर और इधर, पूरा दो बार गया तब एक बार बीच में आया। सेंटर अप्रमाद के कितने क्षण है, एक क्षण, दो क्षण जो है प्रमाद के, वो प्रमाद में जाकर के अप्रमत्त होने के लिए फिर से कोशिश करें।
पेंडुलम से बिल्कुल क्लियर,
एकदम क्लियर है, दो समय और एक समय। ये होगा ही, आप सामायिक में बैठेंगे तो शुरू शुरू में तो एकदम इतना उत्साह, दो चार नमोकार पढ़े क्या मजा आ रहा है एक काय सर्ग में, उसके बाद अब कितने हो गए, कितने रह गए, कितने हो गए, कितने रह गए, ये होगा ही नियम से, क्योंकि बहुत शक्ति लगती है। सबसे ज्यादा शक्ति मन को रोकने में लगती है, शरीर को रोकने में लगती है, वाणी को रोकने में भी लगती है, लेकिन मन को सबसे ज्यादा, और शक्ति संचित भी होती है, जितनी शक्ति इसको रोकने में लगती उतनी शक्ति हमारी संचित भी होती है। तो ध्यान और सामायिक हमारी शक्ति को संचित करते हैं, हमें और अधिक शक्ति देते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास अभ्यास जिसका जितना बढ़िया होगा उसके लिए।
जैसे नकार दे रहे हैं वो ठीक है, मन नहीं लग रहा तो चलो शिखर जी गए थे,
हाँ, ये सब ये मन लग रहा है,
ये ठीक है,
ये सब मन लग रहा
है, ध्यान ही नहीं है कि नमोकार में पढ़ रहे हैं,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब भी माफ है,
मतलब चलता जा रहा है और
नमोकार भी चल रहा है, दो काम एक साथ तो हो ही जाते हैं, बात करते रहते हैं, और अगर जूते उते के बंद बांध रहे हो तो बंद भी बांधते हैं, बात भी करते रहते हैं, नहीं करते हैं, बहुत सामान्य सी चीज है अपने कावक। मैं तो कई बार लोगों से अपना लिखता भी रहता हूँ, हाँ बोलो क्या बोलना है आपका, का तो लो काम नहीं, आप बोलते जाओ हम सुन रहे हैं अपना, जब तक ये निपटा भी देते इतना तो कर लेते हैं। 40-40 देखा मैंने, इंदौर में थे एक, 40 बातें एक साथ आप बोल दीजिएगा, कैलकुलेशन है मान लो तो 40 संख्या बोल दीजिएगा, वो थोड़ी देर 30 सेकंड के बाद 40 का टोटल आप कहेंगे तो टोटल करके बता देंगे, शुरू के 20 में से आखिरी की 20 घटा करके बताना है तो घटा के बता देंगे।
कंप्यूटराइज्ड माइंड है वो बिल्कुल।
11 उनसे पूछा हमने कि कैसे किया, तो बोले जब मैं 11-12 वर्ष का था तब से मुझे ये अभ्यास दिया गया, तब से अभ्यास दिया गया, एक एक घंटे रोज जो है कंसंट्रेशन करना पड़ता, तब जाके आज इतनी स्थिति की 40 चीजें लगातार कोई कहे चमत्कृत हो जाते हैं। वो ज्यों का त्यों दोहरा देते थे, मेरे से उनकी थोड़ी देर बात हुई तो मैंने जितने फास्ट उनसे जो भी बात करी उन्होंने पूरी की पूरी ज्यों की त्यों कह दी, जबकि ऐसा होता नहीं, टेप कह सकता है व्यक्ति नहीं कह सकता,
पावर है, एक्स्ट्रा पावर है
ये, हाँ ये सीखी जा सकती ध्यान के द्वारा, ये चीज आ जाती, रिमेम्बरिंग बढ़ जाती है अपनी,
वो तो एक तरीके से एक्स्ट्रा पावर है,
सबके पास है
लेकिन
डेवलप नहीं कर
सकते, उसका छह होना जरूरी
है, पर्दा कैसे हटेगा, ये उपाय है उसका,
पर्दा
कि शरीर संभले वाणी भी संभल गई, पर जो जितना अधिक मौन रहता है अर्थात बोलने की कम चेष्टा करता है, अवसर आने पर ही बोलता है, उसके वचन सिद्ध हो जाते हैं, जो उतनी ही क्रिया करता है जितनी आवश्यक है उसकी क्रिया परफेक्ट होती है, और मन को वो उतना ही दूर तक ले जाता है जितना आवश्यक है, उतना ही सोचता है तो वो बहुत रेस्ट महसूस करता है, रिलैक्स, और कोई रिलैक्स
मन वचन काय का जितना जरूरी हो उतना उपयोग,
उतना उपयोग उनका सदुपयोग करना, हम लोग मिसयूज बहुत करते हैं अगर देखा जाए अपने मन वचन काय का, पर्पज लेस, और उनका प्रॉपर उपयोग किया जाए तो तीनों चीजें सोने की तरह हैं, पांचों इंद्रियां हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं, एक भी कम हो तो मोक्ष नहीं हो सकता, आंख फोड़ लेने से किसी को मोक्ष नहीं होता, लेकिन आंख से जरा ठीक देखना सीख जाओ तो मोक्ष हो जाएगा, बस इतना ही है, कान से जरा ठीक सुनना सीख जाओ, आज का टाइम बस 5 मिनट में फ्री हो रहा है, अरे लोगों को लेकर, हाँ
जो व्रत लिए जाते हैं,
व्रत लिए जाते हैं,
व्रत लिए जाते
हैं,
हाँ तो व्रत लिए जाते हैं, उन अपन को दिन भर आज आत्मचिंतन करना है या धर्म के ऊपर ध्यान करना है इसलिए व्रत कर लेना है या अलग है,
हम
या ध्यान चिंतन करने के लिए व्रत का लेना जरूरी है?
हमने सबसे पहले क्या समझा था, जो भी आचरण हम समझ रहे हैं या जो भी आचरण हम अंगीकार करेंगे, हमने परिभाषा क्या बनाई थी, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए बेनियम उपनियम जो हमारे आत्म कल्याण में सहयोगी हैं, वे ही चारित्र या कि वही आचरण कहलाता है, हमने और किसी आचरण की बात ही नहीं की, हमारे आचरण का पर्पज ही ये है कि हम अपने आत्म कल्याण को या अपने आत्मा की पवित्रता को प्राप्त कर सकें, पवित्रता बढ़नी चाहिए, व्रतों को ग्रहण करने के साथ साथ हम 24 घंटे क्या ध्यान रखेंगे, क्यों व्रत लिए हैं, मेरे मन की पवित्रता बढ़नी चाहिए, मेरा राग द्वेष कम होना चाहिए, इतना ही पर्पस है। इसलिए तो मुझे कई बार कहना पड़ता कि आलू तो छोड़ दिए, कषाय तो बहुत कर रहे हैं, तो अपने अपने उद्देश्य में तो आप असफल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कालू छोड़ के गलत किया, आप खाना शुरू कर दीजिए, नहीं, आप अपने उद्देश्य में असफल हो गए। आपका उद्देश्य तो उसको छोड़ने का ये था कि चलो एक चीज और छोड़ी, उसकी वजह से आकुलता होती थी कि अब हमारे मन की सब्जी थी वो बन नहीं बनी है, तो आकुलता हो रही थी, हमने छोड़ ही दी है भाई, अब हमें आवश्यक उसकी वजह से होने वाली आकुलता छोड़ दी हमने। रात्रि में अब 8 बजे 10 बजे लौटना होता था और 4 बातें सुनना पड़ती थी कि अब आए हैं और चलाना, ये रात्रि भोजन का त्याग ही है, हमारा डिब्बा रख दिया करें, हम तो वहीं 6 बजे खा लिया करेंगे, शांति तो रहेगी, रात में लौट करके आकुलता तो नहीं होगी, इसके लिए रात्रि भोजन छोड़ा था मैंने। ये मेरा पर्पज है, ये सॉल्व होना चाहिए। कोई भी छोटा सा व्रत भी है उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है, और हमें हमेशा उद्देश्य की पूर्ति करते रहना चाहिए। 9 बार नमोकार भी पढ़ा है तो इसलिए पढ़ा है कि मेरा मन उतनी देर के लिए पवित्र, ये हमारा दिन भर आज मैं ऐसा ऐसा करूंगा, काय के लिए करूंगा, अपने शांति के लिए करूंगा, और उससे मुझे शांति मिली, मेरे आसपास शांति फैली कि नहीं फैली ये ध्यान रखूंगा। ऐसा ना हो कि मुझे तो शांति मिल गई लेकिन दूसरे को अशांति उत्पन्न कर दी मैंने अपने व्रत नियम संयम से, तो ये मेरे व्रत नियम संयम दूसरे को अशांति क्यों पैदा कर रहे हैं? इसका मतलब मेरे करने में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि व्रत नियम संयम तो स्वयं को भी शांति देते हैं और आसपास के वातावरण को भी शांति दे। व्रती व्यक्ति से दूसरे को अशांति हो तो उसका मोह हो सकता, राग हो सकता है कि हमारा बेटा है और सुबह से खाया नहीं है उसने, कहता उपवास करूं और मां को जो है तकलीफ हो रही है, वो मोह की वजह से, लेकिन
अशांति नहीं
है। तो ये बहुत आवश्यक है, प्रति व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को भी जो है पवित्र बनाने का विचार रखना चाहिए, अपनी वाणी, अपने शरीर की क्रियाएं, अपना मन,
जो दिनचर्या होती है डेली की, जैसे दिनचर्या उसको भी जरूरी रहता है कि वो उस दिन वो अपनी डेली की दिनचर्या को नहीं करे,
सब कुछ करेगा वो, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल गई है, बस इतना ही है। माँ ने उपवास करा, बेटे को खाना बना के खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी मुझे बताओ, खिलाएगी अपने लिए आज उसको कोई आकुलता नहीं, और दूसरे को भी आराम से प्रेम से खिला रही है, कोई दिक्कत नहीं उसको, आज वो आकुलता नहीं करेगी, चिड़चिड़ाएगी नहीं कि मेरा उपवास और तुम लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हो, खाना हो तो खा लो नहीं खाना तो जाओ,
ऐसा
नहीं कहेंगे। अगर गृहस्थी में है तो नहीं कहेंगे कि हम नहीं बनाते आप अपना बना लो, तो फिर आपका व्रत जो है ठीक नहीं है। हाँ, आपने अगर पहले से बोल दिया है और काम करने वाले लोग हैं उनसे कह दिया कि क्या हमारे व्रत में आप सहयोगी बनेंगे, आज क्यों ना हमने खा भी नहीं रहे हैं, अगर हम नहीं भी बनाए तो तुम लोग कर लोगे क्या? वो कहें हाँ आप तो निश्चिंत रहिए हम सब कर लेंगे, तो फिर बैठे बैठे आकुलता ही मत करना कि तुमने जी ऐसा क्यों नहीं किया और तुमने जी ऐसा क्यों किया, हम होते तो हम जो और अच्छे से करते। बहुत अगर थोड़ा सा वाली आप बहुत अलर्टली देखेंगे इन चीजों को, मैं तो
सजगता है, अलर्टनेस है, अलर्ट हर चीज में कितनी, मतलब
अपने भावों को परखते रहिए।
क्या होता है कि अचानक जैसे
का प्रवचन शुरू होता है,
कल के चर्चा में कोई नई चीज, कोई शब्द ऐसा जो कि अपने को नहीं समझ में आ रहा, इस पर डिस्कशन और
प्रैक्टिकल वो है, मतलब जब व्रत होता है तब धर्म नहीं हो पाता, जब होते हैं तो व्रत नहीं, तो जैसे एक प्रैक्टिकल है, जैसे जिस दिन अपन उपवास रखते हैं तो उस दिन क्यों ऐसा ध्यान या आत्मचिंतन में मन क्यों नहीं करता, ऐसा एक प्रैक्टिकल है,
जिस दिन हम
व्रत करते हैं उपवास करते हो, या जैसे आदत नहीं है तो अपन ने जिस दिन उपवास कर लिया
दो कंडीशन है। पहली स्थिति तो ये है कि या तो हमने अपनी शक्ति से अधिक व्रत ले लिया है, एक बात। दूसरी बात, कोई भी चीज हो, हमारी शक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन पहली बार जब हम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आएंगे। उसके रिजल्ट्स यही आएंगे कि पहली बार की है तो सारा ध्यान हो सकता है कि दिन भर भोजन पे जाए, या कि हो सकता है इस चिंतन में जाए कि आज तो हमारा निकल जाएगा, कल कैसा करेंगे, कल क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज खाएंगे, शायद इसमें ध्यान निकल जाए। हाँ, निकल सकता है, ये बहुत माने संस्कार है क्योंकि जीव का, इसलिए इसमें भी कोई हर्जा नहीं है कि अगर ऐसा भी विचार आ जाता कि कल ऐसी ऐसी चीज खाएंगे तो कहते थोड़ा दोष लग गया आपको, बाकी भंग नहीं हुआ है। इसी तरह ये ध्यान आ गया कि हम तो जो है वो दिन भर हमसे होता नहीं और हम कैसा करें, शाम को जो है तोड़ दें क्या हम, ऐसा भाव भी आ सकता है। पर हमने जो भी संकल्प किया है, इसलिए अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो व्रत तो संपन्न हो जाए, या कि धर्म ध्यान की जगह सोने का मन होता है, या कि टाइम पास करने के लिए कोई एंटरटेन के लिए हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से मन हमारा लग तो जावे, कहीं भी लग जावे और दिन निकल जावे किसी तरह, रात तो सो के निकाल देंगे तो हो सकता है शाम 7-7.30 बजे से सो जाएं। ऐसी सारी चीजें पहली अवस्था कम से कम उपवास करने वाले के लिए इतनी चीजें घटित हो सकती हैं, पर इस वजह से कि ये सब होता है हम क्या उपवास करना छोड़ दें या हम शुरुआत ही ना करें? क्या हम जब तैरना सीख जाएंगे तब उतरेंगे पानी में? ऐसी जिद तो नहीं हमारी? नहीं, हमें पहले पानी में उतरना ही पड़ेगा। तैरना कोई जमीन पर नहीं होता, सीखा जाता। जब जब भी हम ऐसा करेंगे तो शुरुआत में ऐसा ही होगा। इन सब की हमारी तैयारी है कि ऐसा होता है कोई बात नहीं, पर हम तोड़ेंगे नहीं व्रत। क्षति मनः शुद्धि विधेर अतिक्रमम्, ये अतिक्रम हुआ है, मन की शुद्धि नष्ट हुई है बस, बाकी हमने भोजन नहीं किया। फिर मन में ये प्रश्न आएगा कि जब मन से हमने खाई लिया तो खाई लो ना फिर, तो कहते ऐसा भी नहीं विचार करना, क्योंकि अगले बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो फिर ये विचार मिथ्या विचार नहीं आएंगे। पहली बार में तो ये जरूर से आएंगे। कोई भी एकदम सीखा सिखाया तो है नहीं कि उपवास उसने सीखे हुए हों जिनमें उसे आकुलता नहीं करनी, तो दूसरी कंडीशन मुझे लगता है कि ये ज्यादा है। पहली वाली तो है ही कि अपनी शक्ति के अनुसार ही व्रत लेना, शक्ति से अधिक लेने पर आकुलता होती है, पर ऐसा ना हो कि शक्ति को हम छिपा लें, आकुलता होगी इसलिए हम ले ही ना। नहीं, आकुलता तो थोड़ी बहुत होगी, तभी तो जीतना पड़ेगा। भूख ना लगे तो उपवास किस काम का? भूख तो लगेगी तभी तो शुदा परिचय सहन करेंगे, नहीं तो फिर परिचय का मतलब नहीं। भूख ही नहीं लगनी चाहिए तब तो उपवास है, तो नहीं ऐसा तो संभव नहीं। प्यास लगेगी, भूख लगेगी, एक एक क्षण निकालना मुश्किल हो जाएगा, पर इसके बाद भी हम शांत रहेंगे, इसके बाद भी शांत रहेंगे, हम सहन करेंगे, यही तो कर्मों की निर्जरा का कारण बनेगा। तपसा निर्जरा, ये तपस्या है जिससे निर्जरा होगी, और आसानी से कट गया, कुछ भी नहीं ध्यान रहा आपके लिए तो बहुत आसान हो गया, तो निर्जरा होगी नहीं। तब ऐसे व्यक्ति को जो है ना शाम के समय, हाँ शाम के समय यदि ऐसे ऐसा लगता है तो शाम को हमें किसी चीज के लिए, कि दिन भर तो हमने करा, शाम को हम कोई चीज ले लेंगे ताकि हमारी रात आसानी से, और रात अकेली नहीं काटना है, दूसरे दिन कायदे से तो पूरा पूजा पाठ करके सुबह सुबह से एकदम लेके नहीं बैठ जाना, पूजा पाठ करके मुनि को भोजन दे सब कुछ करके इतना सब, और कहते हैं कि सामायिक करके दूसरी वेला में भोजन करेगा कायदे से तो 2 बजे, और अगर 11 बजे भी करता तो पहली वेला में करे तो भी पूजा पाठ इत्यादि से सबसे निवृत्त होके कर, उसकी शक्ति है कि नहीं, कल मेरा पूजा मन लगेगा कि नहीं, ऐसा विचार कर ले। अगर नहीं लगता है तो ठीक है भाई, फिर हम आज जो है शाम को कुछ ले लेते हैं, या फिर जो है सुबह सुबह से जो है पूजा वूजा नहीं कर पाएंगे उसके पहले ही कुछ पानी या कि दूध चाय जो भी होगी वो ले लेंगे फिर करेंगे। अपनी शक्ति निराकुलता के लिए व्रत है, और वो निराकुलता क्रम क्रम से बढ़ेगी, एकदम नहीं बढ़ेगी कि लेते ही साथ निराकुलता हो गई। शुरू में तो बहुत आकुल विकल होंगे परिणाम, क्योंकि संस्कार तो खाने का था, ये अपने को ध्यान में। तो दो चीजें हो गई, जो आपने प्रश्न बहुत जबरदस्त किया है कि जिस दिन व्रत होता उस दिन धर्म नहीं हो, आप धर्म और व्रत दोनों को अलग अलग मत करिए। व्रत अगर ठीक ठीक ढंग से पालन हो रहा है तो वही धर्म है, धर्म अलग से कोई चीज नहीं है। आप ये सोचते हो कि स्वाध्याय करना धर्म है या आत्मचिंतन करना धर्म है, सहन करना धर्म नहीं है, तो आपकी ये धारणा ठीक नहीं है। जो हम सहन कर रहे हैं वही हमारा धर्म है। हम भूख को भूख की तरह देख रहे हैं और सहन कर रहे हैं, सहा नहीं जा रहा है फिर भी सहन कर रहे हैं और निर्जरा कर रहे हैं, क्योंकि समता रखे हुए हैं। सहन कर, सहन भी एक तो होता है मजबूरी में सहन करना, उससे काम निर्जरा होती है, और एक होता हमने बुद्धिपूर्वक सुबह से शाम तक भिखारी को भोजन नहीं मिला वो भी भूखा रहा है, और सुबह से हमारा संकल्प था कि आज भोजन मिलने पर भी ग्रहण नहीं करूंगा, हम भी भूखे रहे हैं शाम तक। दोनों को भूख की वेदना है, लेकिन जिसने संकल्प पूर्वक भूख की वेदना सही है वो कर्मों की निर्जरा करेगा, और जिसने सुबह से शाम तक ऐसे ही निकाल दिया है समय कि अब मिला ही नहीं है, तो उसके लिए कोई निर्जरा नहीं, पाप का बंध है। इसलिए अपन ये ध्यान रखें कि हमने अगर सहन किया है, व्रत किया है, तो वही धर्म। जो भी व्रत लिए जाएंगे वो ऐसा लगने लगता है कि आज हमको वो एक बहुत ऊंची स्थिति वाली चीज अपन ले लें। आप जो कह रहे हैं वो ये कि होना ये चाहिए था कि व्रत के दिन हमारा आरंभ परिग्रह का त्याग होना चाहिए और धर्माव्रत, फिर हमारी वैसी मेजॉरिटी हो, दो पांच लोग हों जिनके साथ हम डिस्कशन करें हैं, और कोई पंडित जैसा कोई हमसे विशिष्ट हो जिसके चरणों में बैठ के हम धर्म की चार बातें सुने, उससे डिस्कशन करें, ऐसा सब जब बने तब होता है कि हाँ हमने पूरा दिन जो है धर्म ध्यान पूर्वक काटा, व्यतीत किया है। वो बहुत ऊंची, उसमें नहाना धोना भी नहीं सब, हाँ कुछ नहीं, उपवास किया है तो सुबह से ही नहाना धोना नहीं है, कुछ नहीं, पूजा भी नहीं करनी है, वो बहुत उत्कृष्ट हो गया। वो जैसे कि संघ में साधु करते हैं, ब्रह्मचारी भी संघ में है तो फिर वो उस दिन न नहाएगा धोएगा ना कहीं जाएगा, सुबह से ही सामायिक में बैठा है, उठ गए तो उठ गए, नहीं उठे तो कोई बात नहीं, शाम तक हम बैठे रहेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे या सुन लेंगे, बस इतने, वो उत्कृष्ट स्थिति। पर जिसको सब काम करना है, सुबह से नहा धो करके खाना बनाना है या ऑफिस जाना है और उपवास भी करा है उसने, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो आरंभ सब चल ही रहा है, बस सिर्फ उपवास किया है उसने और नहीं, इससे ज्यादा नहीं किया।
इसके लिए भी नियमित साधना वाला पथ नहीं है क्या?
मैं समझा
नहीं, मतलब जैसा मेरे घर के मैं इनको समझ रहा था कि ये सब करने के लिए तो ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसमें आदमी विचलित ना हो और अपने जो उसने घर लिया है उस पर वो सुदृढ़ रहे।
एक्चुअली अगर कोई हम प्रक्रिया बता देंगे तो हम बहुत मैकेनाइज हो जाएंगे, और हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि व्यक्ति के भीतर से वो चीज स्वतः उठे, हम कोई प्रक्रिया उसे नहीं दे रहे हैं, वो अपने अनुसार अपनी प्रक्रिया निर्धारित करे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी जीवन की उसके अपने ऊपर है। और मैं बंदी बधाई प्रक्रिया दे सकता हूँ कि सुबह से ये कर लेना, दोपहर में 11 बजे तो फिर ये करना हो, 1:30 बजे ये कर लेना हो, 3:30 बज जाए तो फिर ये कर लेना, मैं वैसी प्रक्रिया दे सकता हूँ, पर वैसी प्रक्रिया का मेरा मन नहीं होता कि देव क्या पता उसमें वो अपने को कर पाए कि नहीं कर पाए एडजस्ट, तो और आकुलता होने लगे। तो कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर तो यही है कि हम निराकुल रहेंगे, हमारा उद्देश्य निराकुलता का है। अब और अपनी शक्ति को विचार करके हम लेंगे, किसी इसीलिए किसी गुरु की साक्षी में ही व्रत लिया जाए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि आपकी क्षमता कितनी है। जैसे माँ जानती है कि छोटा बेटा जिद तो कर रहा है कि हमको 2 लड्डू दे दो, और खाएगा वो आधा और अभी डेढ़ छोड़ के भग जाएगा, और बड़े वाले को देख के कह रहा है क्योंकि उसको 2 दिए थे, पर उसकी क्षमता तो उतनी ही है, अभी तो दूध में पानी डाल करके पिलाना पड़ रहा है और कह रहा मलाई खिलाओ, मलाई का लड्डू दे दो, तो बेईमानी वाला, तुम्हारे काम का यही है, नहीं पीना हो तो उठो जाओ।
प्रक्रिया से अलग सवाल है, वो धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस की जाए, प्रैक्टिस कर करके उसको फिर बढ़ाते जाए।
मेरा इसके मामले में सोचना ये है कि जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती, फिर इनके पीछे छुपा हुआ जो उद्देश्य है वो सब समाप्त हो जाता है और हम उस प्रक्रिया में मैकेनाइज प्रोसीजर में बंध जाते हैं, आत्म शांति नाम की चीज मिस हो जाती है, प्रक्रिया फिर भी चलती रहती है। आप नहीं देख रहे हैं आज के समय कितने बढ़िया से हो सकता ठाट बाट से पूजा करता हो व्यक्ति रोज, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो पूजा कहाँ चली गई, वो आई नहीं थी, पूजा हुई नहीं थी, पूजा हुई हुई तो बाहर निकलने पर उसके जीवन में झलकनी चाहिए थी वो पूजा। जिसने उपवास करा है उसके जीवन में वो उपवास का दिन पूरे दिन प्रदर्शित होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए उसके जीवन से। मेरा सोचना आचरण के बारे में ये है। आचरण को मैं कोई वैसी बंधी बधाई प्रक्रिया नहीं देना चाह रहा हूँ।
ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट आप बता रहे हैं, ये एक तरफ मुनिवर है, दूसरा समाज है। मुनिवर जो कहते हैं समाज, उसको प्रक्रियाबद्ध तरीके से चलते हैं, कि वो झगड़ते ही नहीं कि मुनिवर ने जो कहा वो समाज में झगड़ रहा हो,
प्रकट नहीं होता,
पाता ही नहीं।
और हमारी हमारी कमी यहीं पर है। हमने मंदिर का नियम दे दिया, आपने ले लिया, बहुत आसान है। आलू छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन मैं कहूँ कि देखो आज जो है आलू छोड़ने के साथ साथ थोड़ा गुस्सा करते हो तो कम करना, या गुस्सा भी कर लेना तो 100 जगह करते हो तो कम, जो अभी तक किसी को नहीं दिया हो। मैंने कहा थोड़ा सोच के दूंगा। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि आप झूठ बोलते होंगे दिन में कई बार, बोले हाँ। हमने कहा काउंट कर सकते, बोले यादगार नहीं। हमने मान लो अच्छा 100 झूठ बोलते हैं, आप एक मत बोलना, बोले ये नहीं कर सकते, वो तो 100 ही बोलेंगे, बोली जाएंगी तो पूरी बोली जाएंगी, हम सच बच नहीं। फिर एक बार आया फ्लो में तो फिर हम झूठ ही झूठ बोलते हैं, और दिन भर जो है हो सकता है 100-200 झूठ बोलते हैं। बहुत ईमानदारी से उसने कहा। तो मैंने कहा अच्छा एक भी कम नहीं कर सकते, एक भी नहीं कम कर सकते, अच्छा इतना तो कर सकते हैं कि अपने परिवारजनों से कोई झूठ बोल दो तो एकाध परिवारजन से शाम होते ना होते कह देना कि वो जो सुबह कहा था ना, दोपहर कहा था, वो झूठ कहा था, क्षमा करना। बोले हाँ ये संभव है, हो गया व्रत, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी उस व्यक्ति की। वो एक झूठ, जो एक झूठ कन्फेस किया ना, वो और 100 झूठ को मुश्किल में डालेगा। या तो आप सबके सामने इस तरह करते, फिर तो आदमी मानेगा कि आप पहली बार जो कहते हैं वो आप झूठ कहते हैं हमेशा, आपके विश्वास, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। अगर आपको अपना विश्वास किया कायम रखना है तो आप कल से फिर ठीक संभाल के बोलिए। एक व्यक्ति को सिर्फ एक मिनट का टेलीविजन का त्याग दिया था मैंने, सिर्फ एक मिनट का, 6 आवर्स देखता था, और बुजुर्ग थे, 60 साल के थे। उनके बच्चों ने कहा कि पापा को कहिएगा 60 के हो गए और टेलीविजन देखते, 6 घंटे कम से कम देखते हैं, व्रतों के दिन में तो कम से कम छोड़े। तो बोले महाराज 1 घंटे कर देते हैं। हमने कहा 1-1 घंटे नहीं, देखना पूरे 6 घंटे, बस 1 मिनट मेरे लिए छोड़ देना। अब वो जब से जो है दूसरे दिन आए कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, आप तो या तो पूरे छोड़वा दो और या फिर पूरी परमिशन दो। क्यों? बोले वो बस यही बना रहता था कि वो हर घंटे में 1 मिनट आपके लिए छोड़ना है, बंद कर देना, देखना नहीं है। तो वो 59 मिनट भी हम ठीक से नहीं देख पाए 1 मिनट की वजह से। हमें लोगों को कोई बंधी बधाई प्रक्रिया बिल्कुल नहीं देनी है। हमें उनको सिर्फ एक, मैंने जो लक्ष्य है वो बस बता देना, उस लक्ष्य में आप अपने अनुसार, अपने नेचर के अनुसार एडजस्ट करिए और आगे बढ़िए। हो सकता है कि कल आप दूसरे ढंग से करें। पूजा का लोग ढंग पूछते हैं कि पूजा का ढंग क्या है। पूजा का तो कोई ढंग ही नहीं हो सकता। पूजा तो बिल्कुल दुनिया के काम तो व्यवस्थित हो सकते, पूजा में क्या हमारा भाव लगा तो हो सकता है कि हम एक ही पंक्ति पेड़ पढ़ते रह जाएं कि हे गुरुवर शास्वत सुख दर्शक, वहीं अटक गए हम, अब अटके हैं। तो दूसरे लोग की 2 पूजाएं हो गई, हमारी तो वही अभी हो ही नहीं पा रही, पूरी नहीं हो पा रही शांति से। हो सकता कल के दिन दूसरी लाइन में मन लग जाए तो हम दूसरी लाइन पढ़ते रहेंगे, 2-2, 4-4 बार करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। शांति पाठ हमने आज किया कि नहीं किया, हमें इसकी चिंता नहीं, हम नहीं मानते इस चीज कि एक बाधा बंधाया प्रक्रिया हमने समापन कर दी। शांति पाठ में हो सकता हमने 2 लाइन छोड़ भी दी, हमारा मन नहीं हुआ, या हमने अपने मन की 2 लाइन जोड़ दी। ये बंधी बंधाई क्यों प्रक्रिया? आपके मन में क्या डोल रहा है? कभी ऐसा दर्शन किया आपने कि जाकर के खड़े हो गए और कुछ याद नहीं है, बस क्या बोलना है? कुछ भी नहीं बोलना, भगवान सब जानते हैं, तो हाथ जोड़े खड़े हुए। नहीं तो जाते ही साथ प्रभुपतित पावन में पावन चरण आयु शरण जी, फिर दूसरी में चरण आयु शरण जी, और फिर भगवान भी नहीं दिखे और गरीब का विनती हो गई, पता ही नहीं। क्योंकि एक मैकेनाइज प्रक्रिया, यही तो कर रहे हैं अपन। शांति नहीं मिलने का कारण सिर्फ ये, हम व्रत अगर किसी को देते हैं सबसे पहले आपको उतनी समझ है तो ले लो, नहीं तो हम नहीं दे सकते साहब। आप ही बता दो व्रत, मैं तो बताऊंगा नहीं। व्रत आपको लेना, व्रत दिए नहीं जाते, व्रत लिए जाते। अगर आपकी लेने की क्षमता नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं है कि इस व्रत को कैसे मुझे पास करना है, तो फिर मेरे पास देने का समय नहीं है। तो व्रत वो है, आपने चूंकि प्रश्न वैसा किया कि व्रत और धर्म दो अलग अलग चीजें क्यों हो रही, बिल्कुल सही है। व्रत अलग थलग रह जाता है और धर्म जीवन में घटित नहीं होता। क्योंकि व्रत के साथ जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, इसलिए वो धर्म जैसा लगता ही नहीं कि ये धर्म है। अपने लक्ष्य को हम ध्यान में रखें और प्रक्रिया को पूरा करें। अगर मन में इस तरह के भाव आ भी जाते हैं तब उनको ही तो संभालना है, और क्या करना है। अकेले भोजन का त्याग तो कोई भी कर दे, लेकिन भोजन के त्याग के साथ या उनोदर किया है तो कम भोजन किया है तो कम भोजन में आकुलता तो नहीं है कि ये और खा लेते, होने दो आकुलता, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। जब बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है तो ठीक है, फिर हम ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा हो तब फिर आपको लगेगा कि हाँ धर्म झलका उसके उसके भीतर से। तो ये 12 अपन मैं अनुव्रत पढ़ लिए थे और गुण व्रत और शिक्षा व्रत पढ़ लिए थे कि ये इतने इतने व्रतों का पालन, और आज अपन उसको दूसरे ढंग से देखें कि एक व्यक्ति के भीतर सबसे पहले दया प्रकट होती है, उसका मन करुणा से भर गया, वो क्या करेगा, इरादा करके किसी को मारने की चेष्टा तो नहीं करेगा, उसके काम धंधे में उससे बहुत सारी हिंसा होगी, उससे वो दुखी भी होगा, दयावान है, पर दयालु व्यक्ति कम से कम इतना तो नहीं करेगा कि किसी को जबरदस्ती मारे, मारने का भाव करे। ये बात अलग है कि उसके द्वारा मर जावे, लेकिन मारने का उसका मन नहीं बनाएगा, न मारने की कोई क्रिया करेगा, न मारने के वचन बोलेगा, तीनों चीजें। उसके बाद जब वो मारने के वचन ही नहीं बोले तो वही वचन तो सच है, हमने सच की परिभाषा क्या बनाई, जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंचे, ऐसा झूठ या सच दोनों ही झूठ है। ऐसे वचन जिससे दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे वो सब सत्य है, तो हमारा सत्यानुव्रत हो गया। और जब हमने सच बोलना और अहिंसा का पालन करना शुरू कर दिया है तो हम ये जानते हैं कि दूसरे की चीज हड़पने से या चुरा लेने से उसको पीड़ा होगी, और अगर हम हड़पने का भाव करते हैं इसका मतलब अल्टीमेटली हम उसे पीड़ा देने का भाव कर रहे हैं, तब हम तो दयालु हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते, हमारी चोरी भी गई। दूसरे का मन नहीं है और हम उसके साथ अतिरिक्त अधिक अपने मन को खराब कर रहे हैं, अपने मन को विकृत कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, अपने स्वभाव से विचलित हो रहे हैं, उसमें भी मेरी हिंसा होने वाली, पांचों इंद्रियों के विषय जितने अधिक जुटाऊंगा उतनी अधिक मेरे से हिंसा होने वाली है, इसलिए मैं पांचों इंद्रियों के विषयों को ज्यादा नहीं जुटाऊंगा, जो इजीली अवेलेबल होंगे उनको ले लूंगा, ये मेरा ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। परिग्रह की चीजों के प्रति भी जो है, जिस व्यक्ति को ये लग रहा है कि मेरे द्वारा हिंसा कम से कम होनी चाहिए, वो अपनी नेसेसिटीज पूरी करेगा, इसके अतिरिक्त और कोई परिग्रह नहीं रखेगा। अगर अपन यहां से शुरू करें, आज वो जो अपन ने व्रत पूरे के पूरे पढ़े हैं तो लगता होगा कि ये पांचों व्रत इस तरह ग्रहण कर लेना है, नहीं, दया आ जाने पर वे पांचों व्रत अपने आप प्रकट हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। अब इसके साथ साथ और बाकी चीजें उसके साथ कैसे आ जाएंगी, जिसका मन इतना दया से भर गया है, करुणावान हो गया है, तब फिर वो अपने आप ही बहुत कम प्रवृत्ति कर देगा, तो अपने आप उसकी दिशाओं की सीमा हो गई कि भाई इससे ज्यादा का काम हमारे लिए है भी नहीं और हमें जाना भी नहीं, कभी जिंदगी में काम पड़ेगा भी तो विदेश नहीं जाना है। उसने अपने दसों दिशाओं की सीमा कर ली, एक उसका यही व्रत हो गया। फिर उसने कहा कि अब ये तो हमने जीवन पर्यंत के लिए की है, अब साल भर के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 महीने के लिए अपन और कम में काम चला सकते हैं, तो उसने और उस सीमा में भी और कमी कर ली, इसी का नाम देश व्रत है, ये दूसरा व्रत हो गया। फिर जो चीजें, जो पाप किसी किसी पर्पस से किए गए हैं, वो पाप तो फिर भी ठीक है, पाप तो है वो, पर कोई ना कोई कारण था कि रोटी बनाना पड़ी है तो आग जलाना पड़ी है, या कि दुकान खोलने में जो है बहुत सारा माल लाना पड़ा, उसमें भी बहुत सारी हिंसा हुई होगी, हमने उद्योग की हिंसा करी है, आरंभ की हिंसा करी हो सकता है, और कोई ने हमारे लिए कुछ कहा हो तो हमने उसके जवाब में अपनी सुरक्षा के लिए उसको कुछ कहा हो, कह सकते हैं विरोधी हिंसा करी हो, लेकिन और संकल्प हिंसा का तो त्याग कर ही चुके हैं, पर दयावश अब हम क्या करेंगे, व्यर्थ कोई क्रिया नहीं करेंगे और कम से कम जो अनर्थकारी है वो क्रियाएं करेंगे। अनर्थकारी क्रियाओं का त्याग कर देना, मन वचन की काय की अनर्थकारी क्रियाओं का त्याग कर देने का नाम ही अनर्थ दंड व्रत है। ये हमारे पास अनायास आ गया, अनर्थ क्रिया जिसमें अनर्थ होता है वो नहीं करेंगे, कि हम चले जा रहे थे और उसको पत्तों को हाथ मार दिया, गाय को धक्का दे दिया, किसी को तंग कर दिया, चिढ़ा दिया, ये सब प्रमादचर्या है, ये नहीं करेंगे। हम दूसरे को पाप का उपदेश भी नहीं देंगे, उससे पाप होएगा तो हमको पीड़ा होएगी, पाप आपसे होएगा पर पीड़ा हमको होगी, हमारा मन दया से इतना भर गया इसलिए पाप का उपदेश भी नहीं देंगे दूसरे के लिए, फिर हम दूसरे की बुराई नहीं सुनेंगे क्योंकि मन हमारा खराब होएगा, इसलिए हमें तो श्रुति भी नहीं करनी और हम दूसरे के बैठ करके हार जीत के बारे में विचार नहीं करेंगे, अपध्यान नहीं करेंगे, व्यर्थ का काय को दूसरे का हिसाब किताब वो जाने उसकी ऐसा, और हिंसा के उपकरण नहीं देंगे, जिन चीजों से हिंसा होने की संभावना वो चीज किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं देंगे क्योंकि वो अगर हिंसा करेगा तो मुझे दुख होगा, वो पहले से ही दुखी हो रहा है कि मैं ऐसी चीज दे दूं और इसने ऐसा करा तो फिर तो दुख तो मुझे होगा, इसलिए अपने दुख से बचने के लिए अगर अपन इसको इस तरह लें कि ये सारे व्रत हम काहे के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए, अपने दुख से बचने के लिए ये हमने, क्योंकि अहिंसक व्यक्ति है इसलिए उसका मन बहुत दया से भरा है, वो इन चीजों से अपने आप बच जाता है, ये अनर्दंड से बच गए, उधर जो है अब सबसे बड़े दयालु तो मुनि महाराज जी हैं, वे कितनी दया का पालन करते हैं, क्यों ना अपन उनके जैसा थोड़ा थोड़ा करके देखें, तो वो तीन टाइम सामर्थ करते हैं तो अपन भी दो टाइम तो कम से कम करेंगे, समता रखेंगे, विपत्ति आ जाएगी तब भी नहीं बोलेंगे, भूख प्यास की बाधा भी आ जाएगी तब भी कुछ नहीं करेंगे, घंटे भर सुबह बैठेंगे भगवान का स्मरण करेंगे और घंटे भर शाम को स्मरण करेंगे, हो गया आपका सामायिक नाम का व्रत, हो गया आपने नियम संकल्प ही कर लिया, अपने मन में ये तय कर लिया कि अब तो अपन भी जो है वैसे ही थोड़ा बैठ करके देखेंगे घंटे भर, उस घंटे भर में क्या करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है कि हम घंटे भर में कोई विनती विनती ही पाठ पढ़ेंगे, या हो सकता है कि हम कुछ भी नहीं करें खाली बैठे हुए सिर्फ अच्छे विचार कर रहे हैं, बुरे विचार नहीं कर रहे हैं, बुरा विचार आ गया तो हमने उसको हटा दिया, या कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, आती जाती सांस को देख रहे हैं, देखो कितनी मुश्किल से ये सांसें चली गईं, जो चली गईं वे वापस नहीं आएंगी, और एक एक समय हमारा बीतता चला जा रहा है, 48 मिनट तक बीतते समय का विचार कर लिया, समय का सदुपयोग हो गया, समय का सदुपयोग करना ही सामायिक है, या कि समय का अर्थ आत्मा भी लिया था अपन ने, आत्मा के बारे में विचार करना, आत्म कल्याण की चिंता करना उन क्षणों में, हो गया सामायिक, ऐसे ही तो मुनि महाराज करते हैं, वो दिन भर करते हैं, हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली इस तरह करने की और देखा करके कि कैसा लगता है अपने लिए, और अपने हिसाब से इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप क्या क्या करेंगे, नहीं आपको जैसा अच्छा लगता है, उन एक घंटे का सदुपयोग करना है, उन एक घंटे अपने को पाप से बचना, हमसे पाप ना हो जाए, पाप की तरफ मन चला भी जाए तब भी वापस ले आना, फिर अब ये तो काम थोड़ा ही सा हुआ, दिन भर में जो है घंटे घंटे भर ही मिलता है, थोड़े घंटे बढ़ाना चाहिए, तो क्या करें, तो फिर अपन एक अष्टमी चतुर्दशी तय कर लेते हैं, उनमें कुछ भी नहीं करेंगे, उनमें आराम से जो है खाने पीने का विकल्प भी नहीं करेंगे और शांति से बैठ के अधिक से अधिक धर्म ध्यान करेंगे, तो एक महीने में चार दिन हमारा अच्छा धर्म ध्यान होएगा, अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये पर्व के दिन है, इनमें हम उपवास धारण करेंगे, कषाय भी मंद करेंगे और भोजन का त्याग भी करेंगे, भोजन का त्याग हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एक प्रकार के भोजन का, दो प्रकार के, वैसे तो चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना उपवास है, अनुपवास कर लेंगे, अकेला पानी रख लेना अनुपवास कहलाता, उपवास होते हुए भी उपवास नहीं है क्योंकि हमारी क्षमता नहीं थी इसलिए हमने पानी रख लिया है, पर तीन प्रकार के आहार का, आहार की आकुलता कम कर दी हमने, उत्ते से काम चल रहा है तो उत्ते से चला लिया काम, इस तरह अष्टमी चतुर्दशी को करना शुरू करता है, इसी का नाम तो प्रोषद उपवास है, ये अपन ने समझा था इस तरह, समझ रहे हैं आज उसको, अभी तो व्रतों के रूप में समझा था पर एक प्रोसीजर क्या है एक्चुअली, क्यों ये सब चीजें घटित होती, फिर उसके बाद सामायिक, फिर भोगोपभोग की चीजों, महाराज जी लोग जो है कितना कम में कम चला लेते हैं, दो चार चीजें लेते हैं, पांच चीजें लेते हैं, अपन भी जो है आज दो चार पांच ही, खाने पीने की पांच दस प्रकार की, चलो अपन 15 के लेते थे आज तो 10 प्रकार की चीज खाने पीने की लेंगे, पहनने ओढ़ने की भी, दिन भर कपड़े कहां तक बदलते रहे और दिन भर सस्ते रहे, नहीं आज तो चार जोड़ी कपड़े बदलेंगे, चार बार कहीं बाहर आहार जाना होगा तो बदलेंगे, नहीं तो बार बार नहीं, क्योंकि जितने बार बदलेंगे उतना जो है उनके प्रति राग होगा और भी कपड़े खराब होंगे तो उनको धोने में हिंसा होगी, मेरा मन तो दया से भरा हुआ है इसलिए एक दिन तो कम से कम मैं भोगो भोग की सीमा कर लूंगा, हमने सीमा बना ली आसानी से, और फिर दूसरा चौथे नंबर का ये इसको क्या कहेंगे, भोगो भोग परिमाण है, और फिर चौथे नंबर का शिक्षा व्रत कौन सा है, बैया व्रत ले लो या कि अतिथि संविभाग ले लो, भोजन करने से पहले हम तो भोजन, हमें तो भोजन करना ही है, पर क्यों ना हम ऐसी भावना भाएं और भोजन का वो वाला टाइम हटा दें डाल दें 5 मिनट, जिसमें कि सारे 3 लोक में जो भी मुनि महाराज हैं ढाई द्वीप में, वो सब भोजन की वेला है उनकी, 10 बजे 9:30 से 10 10 के बीच उठते हैं, तो हम इसके बाद ही भोजन करेंगे। और भोजन की थाली पर बैठने से पहले कि जहाँ जो भी हो साधक जन हो, साधक में सब आ जाएंगे, अपना ध्यान अकेले मुनि महाराज की तरफ जा रहा है, नहीं, मुनि तो उत्तम है, मध्यम में आपके एलक शुल्लकारी का आ जाएंगे, जघन्य में कौन है, साधन ही श्रावक है। तब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि बाजू वाला भूखा बैठा हो और हमारी थाली लग के आ गई इतनी बड़ी, बहुत कठिन ही है, ऐसा ही होता है, बाजू वाला हमारा भूखा पड़ा हुआ और उसके हो सकता कि भोजन की व्यवस्था ना हो, उसके हमारा सादर नहीं, वो भी सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानता है और हम जानते हैं अगर किसी को, तो सबसे पहले उसका स्मरण कर लो, उसके घर तो जाके दे नहीं पाएंगे, कहां तक रोज देंगे, वो भी शायद अच्छा फील नहीं करेगा कि क्या चाहते हम, गरीब है तो क्या हमें आप भोजन दे रहे हैं क्या, नहीं, पर हम स्मरण कर लेंगे कि कोई भी ऐसा हमारा सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानने वाला साधर्मी भूखा ना रह जाए, सब जो है सबके लिए आज इस शरीर के लिए भोजन उपलब्ध हो, मैं अपना भोजन शुरू करता हूँ, इसमें कुछ लगना नहीं है आपका, सिर्फ भावनात्मक भोजन तो कर ही रहे, उसके पहले विचार आ गया इस तरह का, आ ही जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा, भोजन का ग्रास हाथ में आते ही साथ विचार आ जाना चाहिए कि और कौन कौन है पूरे उसमें जो सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानते होंगे, उन सबको भी ऐसा ही अपने जीवन के लिए उपलब्ध हो और हमने भोजन कर लिया, अतिथि संविवाद हो गया, या कि भैया वृत्ति जो हमारे आसपास हैं उनको किसी चीज की आवश्यकता है, धर्म ध्यान में सहयोगी जो चीजें हो सकती हैं, आहार भी सहयोगी है, औषध भी सहयोगी है, शास्त्र भी सहयोगी है और उसके लिए स्थान भी, अभयदान निश्चिंतता देना, मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा दान, हम आज के समय में सब कुछ दे रहे हैं, निश्चिंतता नहीं दे रहे हैं, जितना एक दूसरे से एक दूसरा व्यक्ति भयभीत है सब कुछ होते हुए भी, तो आपस में भी एक ही फैमिली के दो लोग एक दूसरे से भयभीत हैं कि पता नहीं मेरे बारे में ये क्या करेगा, क्या सोचता होगा, अव्यक्त भय है, निश्चिंतता नहीं है, निश्चिंतता का मतलब ही अभय है, जैसे छोटा सा बेटा जो है आप एक बार डर जाएंगे पर वो वहां से सबके बीच में से निकल निकल करके आएगा, नमस्ते महाराज जी, वो सुनाऊं क्या आपको, उसको कोई डर नहीं है, वो यहाँ निश्चिंत है, ये निश्चिंतता है, ऐसी निश्चिंतता हमें दूसरे को देने की भावना तो बहनी चाहिए, नहीं दे पाए ये बात अलग है, लेकिन भावना तो पा सकते हैं कि आज कोई भी जो है मैं किसी को भयभीत नहीं करूंगा, मेरी तरफ से सब, क्योंकि दयावान व्यक्ति है, दूसरे को तकलीफ में काहे को पहुंचाएगा, और तकलीफ में ना पहुंचाना यही तो निर्भय करना, उसके लिए निश्चिंत करना है कि आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिएगा। मैं अहिंसा की परिभाषा ही ये बनाता हूं, मैंने शायद एक बार कहा कि प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन इज द नॉन वायलेंस, हम दूसरे को सुरक्षा दे सकें, दूसरे को प्यार दे सकें, बस इसका ही नाम अहिंसा है, प्रैक्टिकेबल तो इतना ही है, बाकी राग द्वेष से रहित होना ये जो परम अहिंसा है वो तो बहुत ऊंची चीज है, राग द्वेष से तो बहुत मुश्किल है कि मुक्त हो पाए, ये राग तो है कि मुक्त डिस्कशन कर रहे हैं उससे तो बहुत कठिन है कि मुक्त हो पाना, तो इस तरह अगर अपन व्रतों को लें तो 12 के 12 व्रत अपने जीवन में आसानी से घटित हो सकते हैं, ये श्रावक के 12 व्रत हैं, जैसे श्रावक के मिनिमम 4 चीजें थी, दान पूजा शील उपवास, फिर उसके बाद उन्हीं को थोड़ा एलाबरेट किया तो देव पूजा गुरुपास थी, सात स्वाध्याय संयम तप त्याग, और अब कह रहे हैं कि ये सब 12 अगर आपने ले लिए तब आप वास्तव में अब आप धार्मिक हो गए, श्रावक हो गए, इन 12 व्रतों के बिना श्रावक नहीं होता, श्रावक जो चतुर्विध संघ है भगवान का, मुनि आरी का श्रावक श्राविका, उसमें अगर कैडर दिया है तो इन 12 व्रतों को पालन करने वाला, या थोड़ा कुछ कुछ आचार्यों ने कहा कि नहीं 12 पूरे नहीं हो पाए तो 5 अनुव्रत का पालन करने वाला तो श्रावक है, नहीं तो सामान्य गृहस्थ है, गृहस्थ और श्रावक में इतना फर्क है, तो श्रावक के कैडर में आने के लिए ये इतनी चीजें। अब इसके बाद एक और प्रक्रिया चलती है कि इतना उसने कर लिया, अब ये तो थोड़े समय के लिए भी करेगा, जीवन पर्यंत को भी व्रत ले लेगा, पर ये 12 व्रत अगर वो जीवन पर्यंत के लिए ले लेता है तो इसी को मानते हैं प्रतिमा। आज जो है मैं सोचता हूं कि 11 प्रतिमाएं जो श्रावक के लिए जो सीढ़ियां कही गई हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, उसका एक जनरल खाका खींच लें, उनके स्वरूप अपन बाद में समझ लेंगे, पर कैसे धीरे धीरे इंप्रूव होता है, 11 प्रतिमाएं कितने, अपन 5 मिनट में कैसे 11 प्रतिमाओं को कह सकते हैं, सबसे पहले नंबर ये अपन जान चुके हैं कि मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये सारी चीजें उसके श्रावक के भीतर आ गई हैं। पंच परमेश्वरी के प्रति उसकी श्रद्धा है, संसार, शरीर और भोगों के प्रति उसकी अब वैसी दृष्टि नहीं रही जैसी पहले कभी रहा करती थी। अब तो उसका चेंज ही हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया। बस कहते हैं कि अगर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, करुणा, प्रमोद भाव ये सब आ गए हैं, पंच परमेष्ठी में श्रद्धा है और संसार के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं है, ये हो गई पहली प्रतिमा, शुरुआत, पहली कक्षा है। प्रतिमाएं कक्षा की तरह हैं, श्रावक के क्रम क्रम से विकास की जो श्रेणियां हैं या कक्षाएं हैं उसे प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा में भी कक्षा के अनुसार ही काम चलता है कि पहली प्रतिमा में जितने हैं वे सब दूसरी प्रतिमा पालन करने वाले को पहली प्रतिमा के भी और दूसरी प्रतिमा के भी दोनों के मिला के पालन करना पड़ेंगे। जैसे दूसरी में पहुंच गए तो पहली का ज्ञान तो है ही और दूसरी का भी पढ़ना है और पहली वाला भी है, तीसरी पहुंच गए तो पहली, दूसरी और तीसरी, इस तरह से ये प्रतिमाएं। पिछले वाली प्रतिमाओं का जो आचरण था वो सब है और अगले वाली प्रतिमा का जो आचरण है वो भी उसके साथ। अब इतना काम करने से पहली प्रतिमा हो गई थी और थोड़ा आगे बढ़ गए तो यही दान, पूजा, शील, उपवास, छह आवश्यक करना शुरू कर दिए और 12 व्रतों का पालन कर लिया, इसी को दूसरी प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा ही व्रत प्रतिमा है, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। अभी सिर्फ हमारे भीतर अपने दर्शन के प्रति, अपनी फिलॉसफी के प्रति विश्वास हुआ है और हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, इसलिए हमारी दर्शन प्रतिमा, ये व्रत प्रतिमा के अलग। अब क्या करें, व्रती व्यक्ति है और दो बार सामायिक करना भी उसने शुरू कर दिया है, सारे व्रत पालन कर रहा है, पर इससे वो संतुष्ट नहीं है, वो सोचता है कि कुछ और अधिक होना चाहिए। तो अब एक और स्टेप आगे बढ़ाता है, भगवान के या कि धर्म के ज्यादा निकट जाने का उपाय ये है कि हम ऐसा करें कि दोपहर के टाइम में भी सामायिक शुरू कर दें, सुबह और शाम को तो करते ही हैं और अभी तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ी आगे पीछे भी कर लेते हैं, अब तो एक निश्चित समय पर ही सारे काम छोड़ दूंगा क्योंकि मैं इसको प्रायोरिटी देना चाह रहा हूं। अभी तो कामों को प्रायोरिटी देता था तो काम जब एडजस्ट हो जाते थे तब फिर सामायिक कर लेता था, अब ऐसा ना करूंगा, अब तो सामायिक के टाइम पर ही सारे काम छोड़ करके और सामायिक करूंगा, तो सुबह भी, दोपहर में भी और शाम में, तीन समय सामायिक करना शुरू कर देना, ये तीसरी प्रतिमा है। अभी तक तो जो है प्रोषद उपवास अष्टमी चतुर्दशी के दिन कभी किया, कभी नहीं भी किया, कभी थोड़ा कमी रख ली, एक अष्टमी को भी एक आसन कर लिया, लेकिन अब तो भाई ऐसा नहीं करूंगा, अब तो नियम से अष्टमी चतुर्दशी को जो है जरूर से उपवास करना ही करना है, अब तो साधना हो गई है, अब तो आसान हो गया है, और एक दिन पहले आगे पीछे भी एक बार ही भोजन करना है, ऐसा मन में जो, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय धर्म का हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हम धर्म के निकट हो जाए। ये चौथी प्रतिमा हो गई, प्रोसद उपवास नाम की चौथी प्रतिमा। अभी तक तो कहीं भी खड़े होकर के, क्योंकि दो बार खाने का, तीन बार खाने का नियम था, सो दो तीन बार भी खाते तो थे, पर कहीं भी खड़े होकर केला बाजार में खरीदा वहीं छील करके खा लिया, तो ये अब ये नहीं करूंगा, अब तो जरा सोच समझ करके जब तक चीज गर्म नहीं होगी, प्रासुक नहीं होगी, तब तक नहीं खाऊंगा, अब तो सब चीजों को, ताकि लिमिट हो जाए, अब सब जगह नहीं खा सकते, सब चीज नहीं खा सकते, लिमिटेशन करना है, तो कहते अब प्रासुक करके चीजों को खाऊंगा, सचित त्याग नाम की प्रतिमा। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े, अभी तो जो है रात्रि भोजन का त्याग तो शुरू से ही कर रखा था, लेकिन रात में बनाने का प्रबंध भी करना पड़ता था, दूसरे को परोसना भी पड़ता था और खिलाना पिलाना भी पड़ता था और कहना पड़ता था कि बनाओ भैया और खाओ, हम भले ही नहीं खा रहे हैं, ऐसा करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा, अब तो रात में न स्वयं खाऊंगा, न खिलाऊंगा, ना कोई खाता होगा तो उसका समर्थन करूंगा, मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं, मैं तो अपने 7 बजे से ध्यान में बैठ जाऊंगा, तो कौन आया कौन चला गया, मुझे किसी का, घर के और लोग हैं वो जाने, हमने रात्रि भोजन त्याग छठवें नंबर की प्रतिमा ले ली। रात्रि भोजन त्याग, मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से रात्रि भोजन का त्याग, अभी था पहले लेकिन ऐसा नहीं था, अब उसमें स्तर है। अभी तक हमने जिससे विवाह किया था उससे हमारा संबंध था, बाकी सबके प्रति हमारे मन में मातृभाव था या कि बहन के समान व्यवहार था या बेटी के समान व्यवहार था, अब हमने जिससे विवाह किया है उससे भी हमारा अब संबंध वैसा संबंध नहीं रहा। अब वो जैसे बाने कहा, बा को कहा था कि बापू ने की माँ हो गई, अब हमारा ब्रह्मचरी व्रत हो गया, अभी तक अनुव्रत था, अब ये ब्रह्मचरी एक तरह का साथ में रहेंगे, सेवा शुश्रूषा करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अब हमारे मन में कोई विकार भाव शेष नहीं रहा, हमने अपने को इतना जीत लिया परस्पर एक दूसरे को, और मदद भी करेंगे और जीवन यापन करेंगे, रहेंगे ठाट बाट से। ये हो गया ब्रह्मचरी अनुव्रत। अभी तक तो घर गृहस्थी के सब काम करते थे, कमाने भी जाना पड़ता था, पर अब मन नहीं करता है कि कमाए, और हिंसा बहुत होती है, इसलिए अब तो भाई छह प्रकार के जो कर्म हैं, कसी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, इन सबके लिए मैं करूँ वाली लोग आरंभ त्याग नाम की प्रतिमा हो गई, सारे काम धंधे बंद कर दिए। पर अभी जितना जोड़ रखा था वो सब रखा है, अब उतने से काम चला रहे हैं अभी, पर नया कुछ अर्जित करना बंद कर दिया। अब बच्चे संभाल रहे हैं, हमने तो छुट्टी ले ली दुकान से, हमें कोई मतलब नहीं, ना हम देखते हैं ना कुछ करते हैं, वो जाने उनका। पर परिग्रह जितना है वो रखा हुआ था। तो नोवेन फिर एक दिन ऐसा आया मन में कि जो अपन कमाते ही नहीं है, अपना सीमित कर लो ना, बाकी सब बच्चों बच्चों को जिसको देना वो दे, अपना अपने जिम्मे जितना है उतना रख लो, सो परिग्रह का परिमाण कर लिया। ये नौवीं प्रतिमा हो, आठवीं में आरंभ का त्याग कर दिया था, नौवीं प्रतिमा परिग्रह का भी त्याग कर दिया, जितना अपने लिए उपयोगी था उतना रख लिया, बाकी सब बच्चों के जिम्मे, उनकी ऑनरशिप, अपनी कोई ऑनरशिप नहीं रही, अपने लिए जितनी आवश्यक थी उतना रख लिया। पर अभी जो है बच्चों को अनुमति तो देते थे कि तुम ऐसा कर लो और वैसा कर लो, और कोई आ जाता था कि पिताजी इसमें तो ये घाटा लग रहा है भैया, ऐसा नहीं करना था तुम्हें, ऐसा करना था इसलिए बच जाए, ऐसी सब घर गृहस्थी की सब बातों की अनुमति देते थे। अब तो जो है दसवीं प्रतिमा में अब अनुमति देने का भी मन नहीं है, तुम मिटाओ तो और बनाओ तो, हम तो जितना हमने रख रखा उसी में संतुष्ट हैं, हम तुम्हें सजेशन भी नहीं देंगे। देखो दसवीं प्रतिमा होगी अनुमति त्याग, और फिर एक दिन घर में रहते रहते अनुमति त्याग वाला सोचता है कि अब ये भी पराश्रितता है कि उनने कल का निमंत्रण कर दिया है, सब आज ही से हमने उसको स्वीकार कर लिया, अब तो हम निमंत्रण निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो किसी मुनि के साथ में रहेंगे और कोई अपने भिक्षाचर्या के द्वारा मिल जाएगा तो भोजन ग्रहण करेंगे। उद्दिष्ट त्याग नाम की मेरे लिए जो है अब कोई निमंत्रण के द्वारा नहीं बुला सकता, मैं तो अपने आप जाऊंगा, जहां मेरी विधि बन जाएगी वहां भोजन करके आ जाऊंगा, रहूंगा किसी भी मुनि के साथ, तो छुल्लक और रेलक के व्रत ले लेता है। उद्दिष्ट त्याग नाम की ग्यारहवीं प्रतिमा, ये प्रतिमाएं श्रावक की उत्कृष्ट ग्यारह
लिमिट करके कुछ जो पजेशन था
वो दसवीं प्रतिमा में जाकर के उसने वो सब छोड़ दिया, और अब परिग्रह की भी चिंता नहीं रख, अपने लिए उसमें लिखा कि भोजन के बर्तन, पूजन के बर्तन और पहनने के वस्त्र इतने रख लेता है दसवीं प्रतिमा में, अब आरंभ की और परिग्रह की किसी की अनुमति भी नहीं देता कि आप रखो या कुछ करो, ये दसवीं प्रतिमा। और ग्यारहवीं प्रतिमा में तो घर का भी त्याग करके ग्रह तो मुनि बन वित्वा, मुनियों के निकट जाकर के उनसे छुड़लक एलक के व्रत ले लेता है, वो ग्यारहवीं प्रतिमा। ये इस तरह से शाबक की कैडर है, धीरे धीरे वो क्रम से बढ़ता चला।
इतनी आपने बीच में बताया कि जब सामाय करते हैं तो सांस देखते होंगे इसकी कैसी आ रही है,
ऐसा भी है
क्या हो रहा है, क्या ये सांस से कुछ कॉन्सेंट्रेशन कुछ
बढ़ता है? एक्चुअली एक योगा में प्रक्रिया है, यदि आप अपनी आती जाती सांस को, ब्रीदिंग को ठीक ठीक वाच करते हैं तो रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाता है, वो रिलैक्सेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं।
नहीं, इसमें क्या समाज के और एडवांस कोई टेक्निक है कि इससे और आगे बढ़ा जा सकता है कंसंट्रेशन के लिए या और अपना
कंसंट्रेशन के लिए? तो इतना है कि सबसे पहले हमें अपनी सांसों को साधना पड़ेगा, और उसके पैरेलल नमोकार मंत्र या जो भी हमारा पवित्र मंत्र है, नमस्कार मंत्र के अलावा उसी ओम है, अरहंत सिद्ध है, असी आउसा नमः है, ये सब नमोकार से रिलेटेड हैं, इनमें से किसी न किसी मंत्र को उसके ऊपर इम्पोज करना पड़ेगा, फिर हमारी आती जाती सांस सिर्फ सांस नहीं रह जाएगी, वो मंत्र से अभिमंत्रित हो जाएगी, फिर मंत्र ही भीतर जाएगा, मंत्र ही बाहर आएगा, तब वो कंसंट्रेशन। ये मैं बहुत कठिन प्रक्रिया है तो अंतिम यही प्रक्रिया।
तो सबसे बड़ी परेशानी जो है तो समय के समय कॉन्सेंट्रेट करने की है,
कंसंट्रेशन
विचार इतने भागते हैं उस समय।
कंसंट्रेशन इज नथिंग बट ए डायवर्शन ऑफ द माइंड एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड, अशुभ से बचा करके मन को लाना और शुभ में लगा देना, एंगेज करना, इसका नाम कंसंट्रेशन है। नमो अरहंताणम, रुका हुआ है ध्यान, नमो अरहंताणम शब्द भी लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें से नमो अरहंताणम की ध्वनि भी सुन रहा हूं, अगर मेरा थोड़ा सा ज्ञान है तो मैं उसमें से समझ रहा हूँ कि अरंत के कौन कौन से गुण होते हैं, बस इसी चीज पे मैं रुका हुआ हूँ। ये एकाग्रता मेरी कंसंट्रेशन है, अभी सिद्धानम की कोई बात ही नहीं आई। जब ये एकाग्रता खंडित होने लगे तुरंत बोल दिया नमो सिद्धानम, अब सिद्धों पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। जब तक चला सिद्धों पर सिद्धानम, नहीं तो नमो आयरियाणम आचार्य पर केंद्रित हो, नमो वच्छायाणम नमो लोहे सब सामना। एक क्रम क्रम से आप देखेंगे कि एक नमोकार में कर दो दो घंटे सवा दो घंटे हो जाए। बस ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप किस पे कितनी देर रुक सकते हैं। अगर आप दो मिनट रुक सकते, एक मिनट मैं तो कहता हूँ, 30 सेकंड भी रुक गए ठीक, अगला बोल दीजिए। जैसे ही मन और कहीं जाने लगे नमो सिद्धानम, वापिस लौटो कहाँ जा रहे हो, ये नमो सिद्धानम। इसलिए पहले बाहर जल, फिर मन में, फिर अंतर जल। अपन ये प्रक्रिया नहीं करते, बैठ जाते हैं लेकर के प्रोसीजर जो एकदम सही है, अपने अपने उससे जो टैली करें प्रोसीजर अपने मन से, वो अपन प्रोसीजर ले लें और उसके हिसाब से करें। कई लोगों को इसमें मन नहीं लगता, तो आचार्य श्री हम लोगों को पहले बताया करते थे कि शांत बैठ जाना और क्या करना कि घड़ी तो है नहीं अपने पास, मान लो रिमेस करना कि घड़ी लगी, पूरे 12 बज गए उसमें। अब जब मैं एक बार नमोकार करूंगा तो 12:05 हो जाएंगे, जब दो बढ़ूंगा तो 12:10 हो गए। मैं नमोकार पढ़ता जा रहा हूँ और उधर घड़ी का कांटा खिसकता जा रहा है, पूरे 12 बज गए। इधर उधर ध्यान किया तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरे 12 बज गए, मेरा 12 बार नमोकार हो गया है, फिर मुझे 1 बज गया है, पूरे 12 पर राउंड हो गया तो 1 बज गया, 1 बज गया मतलब 12 बार हो गया, 9 बजा दिए घड़ी में और हमने 108 बार कहीं ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि अगर कहीं ध्यान जाएगा तो उधर से गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसमें भी थोड़ा मन लगने लगता है और फिर ऐसा होता है कि घड़ी पर भी ध्यान है और हमारा कहीं और भी ध्यान है, तो कहते माला फैलाओ सामने, इस पर डाल दो माला और शांत बैठो यहाँ पर। आंखों को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा और मन को संभाल के रखना पड़ेगा, एक एक बुरिए पर एक एक मंत्र बोलना है, आगे बढ़ना है, जरा भी आजू